अविनाश बोला था, बस मेरी बहन की जिंदगी में जो ये दुख के बादल आए हैं वो किसी तरह छट जाए और उसकी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाए, उसी के बाद ही मैं अब ऑस्ट्रेलिया वापस जाऊंगा। ये सुनकर अबीर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा था, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और देखना, आस्था की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी। ये सब सुनकर अविनाश को काफी बातें समझ आईं और अविनाश को भी काफी अच्छा लगा था। वो बोला था, बस एक बार मुझे राजबीर जिंदल और सम्राट के उस डार्क विला में जाने का रास्ता मिल जाए, फिर देखना किस तरीके से मैं उन लोगों को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करता हूँ। वहीं दूसरी ओर इस वक्त टाइगर लाल आंखों से मारिया को घूर कर देख रहा था। तब मारिया ने उसकी ओर बिना देखे कहा था, क्या तुम डेविड का ठीक तरीके से ख्याल नहीं रख सकते थे? तुमने इसे डायपर भी उल्टा पहनाया है और देखो इसको सर्दी भी लग गई है, इसके अंदर से हल्की हल्की आवाज आ रही है। नानी माँ ने मुझे बताया था कि जब भी बच्चा इस तरीके से आवाज करता है तो समझो कि बच्चे को खांसी हो गई है, उसे सर्दी हुई है। ये सुनकर टाइगर उसे घूरता रहा और फिर अचानक खुद को रोक नहीं पाया, वो उसके सामने झुककर बोला था, आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे डेविड नाम देने की? देखो मैंने अभी तक तुमसे इस बारे में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं खुद पर कंट्रोल कर पाऊंगा। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ इसका नाम डेविड रखने का क्या कारण है, बोलो, जवाब दो मुझे, क्यों नहीं बोल रही हो तुम? ये सुनकर मारिया ने गहरी सांस ली और टाइगर को देखकर बोली थी, टाइगर तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि मेरी पहली पसंद, मेरा पहला प्यार सिर्फ और सिर्फ तुम ही थे, लेकिन जिस वक्त तुमने अपने ही घमंड में मुझे अपने से इनकार कर दिया था, उस वक्त मेरी जिंदगी में कोई आया था और वो था डेविड। डेविड ने हर तरीके से मुझे खुशियां देने की कोशिश की, इनफैक्ट मैं उसके साथ काफी खुश थी, लेकिन वो मेरा दुश्मन उस वक्त बन गया जब उसने मेरे ही किंग को मारने की सुपारी ले ली। उस वक्त मैंने ठान लिया था कि मैं उसकी जान खुद अपने हाथों से लूंगी, लेकिन इस बात को भी मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि वो मुझे कितना प्यार करता था, मेरी छोटी छोटी खुशियों का कितना ख्याल रखता था। और हाँ, भले ही तुम मुझे कितना ही प्यार करते थे, इनफैक्ट जब क्वीन ने हमें अलग फार्म हाउस पर रहकर रहने की इजाज़त दी थी उस वक्त तुम भले ही किंग से बिछड़ने पर उदास रहते थे, लेकिन तुमने उस वक्त भी मेरा काफ़ी ख्याल रखा। लेकिन क्या कभी तुमने अपने मुंह से दो शब्द प्यार के बोले हैं जिनके लिए मैं तरसती रही? डेविड हर वक्त मुझे अपने प्यार का एहसास कराता रहता था, हर वक्त वो इस कोशिश में रहता था कि मुझे किसी भी चीज़ की तकलीफ ना हो और हर चीज़ मेरे लिए बेस्ट हो। लेकिन तुम, क्या तुमने कभी एक बार भी आगे बढ़कर अपने प्यार का एहसास कराने की कोशिश की है? ये बात मैं जानती हूँ कि तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन प्यार करने के लिए सिर्फ प्यार करना ही काफ़ी नहीं होता, उस प्यार का एहसास कराना भी होता है जो तुमने मुझे कभी नहीं कराया। क्या कभी कराया है तुमने मुझे प्यार का एहसास? प्यार का एहसास मुझे सिर्फ और सिर्फ डेविड ने करवाया था, और अपने बच्चे का नाम मैंने डेविड इसीलिए रखा है क्योंकि जितना प्यार मुझे लगता है कि डेविड मुझसे करता था, उतना ही प्यार मेरा बच्चा भी मुझसे करेगा, और यही कारण है कि मैं आज तक डेविड को सही से भूल नहीं पाई हूँ। मारिया की ये बात सुनकर आज पहली बार पत्थर देव टाइगर की आंखों में आंसू थे। वो तुरंत ही मारिया को गले से लगाकर बोला था, ये बात आज के बाद कभी भी मत बोलना। मैं जानता हूँ कि उस वक्त मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, और ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं अपने प्यार का एहसास तुम्हें नहीं करा पाया, अपनी फीलिंग तुमसे शेयर नहीं कर पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे दिलो जान से प्यार करता हूँ। मैं बहुत चाहता हूँ तुम्हें, तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हारे बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और एक बात डेविड, मुझे अब इस नाम से कोई एतराज नहीं है, अगर मेरे प्यार को डेविड ने प्यार किया था तो अब मैं भी डेविड को चाहता हूँ और उससे प्यार करता हूँ, और याद रखना अब डेविड तुम्हारा अकेले का नहीं बल्कि मेरा भी प्यार है। मैं भी अब अपने डेविड को इतना प्यार करूंगा कि वो भी मुझे बदले में प्यार करेगा। और सच कहूं तो तुमने आज से पहले कभी मुझसे कोई शिकायत भी नहीं की। मैं मानता हूं कि मैं पत्थर दिल हूं, लेकिन क्या अपनी बीवी और अपने बच्चे के लिए भी मेरा दिल नहीं पिघलेगा? जैसे ही टाइगर ने इस तरह की बातें की, मारिया पूरी तरह से चौंक गई थी, लेकिन फिलहाल वो आगे बढ़कर टाइगर को गले से लगाए हुए थी। उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था, पहली बार उन दोनों ने एक दूसरे से खुलकर प्यार का इजहार किया था, और इसी बीच उनका प्यारा सा नन्हा डेविड हल्की हल्की मुस्कुरा रहा था, मानो अपने मम्मी पापा के एक होने की उसे सबसे ज्यादा खुशी हो। वहीं दूसरी ओर सम्राट की खुशी की आज कोई सीमा नहीं थी। घर जाकर उसने मस्ती से झूमना और नाचना शुरू कर दिया था। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार जिस मंजिल को, जिस लड़की को वो पागलों की तरह ढूंढ रहा था, आज वो खुद उसके सामने आकर उसे मिली थी और उसकी खुशी एक अलग ही लेवल पर थी। अब सम्राट को यूं नाश्ते के दौरान झूमते देखकर राजवीर ने उसकी ओर गौर से देखा था। वही राजवीर को देखते ही सम्राट आगे बढ़ा और खुशी से उसे गले लगाकर मिला, फिर उसके गाल पर किस कर दिया था। खुशी में जैसे ही सम्राट ने राजवीर के चीक पर किस किया, राजवीर का तो दिल ही खोल गया। मन तो कर रहा था कि उसका गला ही दबा दे, लेकिन थोड़ा सा संभलते हुए, एंटीबायोटिक डालते हुए उसने तुरंत अपने चेहरे को रुमाल से साफ कर लिया था। ये पूरा दृश्य सम्राट ने देख लिया था, लेकिन बिना बुरा माने वो तुरंत ही लगभग राजवीर की गोद में ही बैठते हुए बोला था, आप नहीं जानते गुरुजी, मैं आज कितना ज्यादा खुश हूँ। मुझे मेरी जिंदगी की वो औरत मिल गई है जिसके साथ पहली बार सम्राट ठाकुर ने सोने की इच्छा महसूस की है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मैं कितना ज्यादा खुश हूँ और कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप देखना, मैं कल के कल गुरुजी आपको उससे मिलवाऊंगा और आप देखना, आपको भी उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। वो इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। तभी राजवीर डार्क वॉइस में बोला था, कहीं ऐसा तो नहीं कि औरतों से प्यार न करने वाले सम्राट ठाकुर को अब किसी औरत से प्यार हो गया है। जैसे ही अचानक सम्राट के चेहरे की खुशी और चमक देखकर राजवीर ने ये कहा, सम्राट ने तुरंत अपना चेहरा एकदम डार्क कर लिया था। फिर बड़ी गहरी सांस लेते हुए वो राजवीर के ठीक बराबर खड़ा हुआ एकदम जेंटलमैन की तरह और बोला था, अब तो गुरुजी लगता है आप धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं जो आप इस तरीके से मुझे जज करने लगे हैं। क्या आपको नहीं पता कि सम्राट ठाकुर क्या चीज है? उसके लिए औरतें सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित होती हैं, और आज तक किसी औरत में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सम्राट ठाकुर के दिल में आ सके। हाँ, इस लड़की में कुछ तो बात है, कुछ तो खास है। जब जब मैं इस लड़की के करीब जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अलग ही तरह की खुशी महसूस हो रही है। मैं नहीं जानता ये सब क्या है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ गुरुजी कि अब उस लड़की के साथ बेड शेयर करने से पहले उसे थोड़ा सा जानने का मन कर रहा है। और अगर आपकी नजरों में ये सब प्यार है तो मुझे लगता है गुरुजी आप बुढ़ापे में सठिया गए हैं। ये बोलकर सम्राट ठहाका लगाकर हंस दिया था और फिर एक बार आगे बढ़कर राजवीर के माथे को चूमते हुए बोला था, चलो ठीक है गुरुजी, आप अपनी बनाई हुई बीवी के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, तब तक मैं चलता हूँ। ये बोलकर सम्राट लगाते हुए तुरंत अपने कमरे में चला गया था।
वहीं राजवीर उसे जाते हुए देखकर तिरछी हंसी हंसते हुए बोला था, इसके करीब जाने पर तुझे अलग लेवल की खुशी महसूस हो रही है, वो खास तो होगी ही, आखिरकार वो तेरे सबसे बड़े दुश्मन अरमान सिंघानिया की बीवी जो है। कहीं ना कहीं ये कहते हुए राजवीर थोड़ा सनकी सा लग रहा था। उसने अभी तक सम्राट की ये गलतफहमी दूर नहीं की थी कि जिस लड़की के पीछे वो इतना पागल है, असल में वो आस्था अरमान सिंघानिया ही है। कुछ तो चल रहा था राजवीर के दिमाग में, और ये बात वो वक्त आने पर ही बताने वाला था। फिलहाल उसने अपनी बनाई हुई बीवी को गौर से देखा और उसके होठों पर उंगली फिराते हुए बोला था, तुम जानती हो, जिस वक्त मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हारी शक्ल सूरत कुछ खास नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें एकदम अपनी बीवी के जैसा खूबसूरत बनाया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि तुम मेरे पास रह सको। और इस दुनिया में अगर तुम्हारा कोई भगवान है तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, तुम्हें बनाने वाला भगवान सिर्फ मैं। ये कहते हुए राजवीर अचानक उसके होठों पर टूट पड़ा था। वो लड़की चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाई थी। उसे राजवीर का इस तरह अपने करीब आना कभी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन राजवीर की दी गई यादों और एहसानों की वजह से वो और कुछ सोच भी नहीं पाती थी। राजवीर के साथ समय बिताने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। फिलहाल वहीं दूसरी ओर अब अगली सुबह थी। नानी माँ अपने बेटे के साथ मौजूद थीं। दूसरी ओर अगली सुबह सारी की सारी लड़कियाँ आस्था के साथ किचन में मौजूद थीं, क्योंकि अगर इस तरीके से वे खुफिया मीटिंग के लिए तहखाने में जातीं या फिर कहीं और सीधे सीधे स्टडी रूम में जातीं तो सब लोगों को शक हो सकता था। आस्था के हाथ में चाकू था जिससे वो फटाफट आलू काट रही थी। उसका इरादा आलू प्याज की पकानियां बनाने का था, क्योंकि आहान ने आज फरमाइश जाहिर कर दी थी। आहान बोला था, क्या आस्था भाभी, जब रौनक और मारियादी प्रेग्नेंट थीं तब आपने हमें कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर खिलाई थीं, और अब देखो कितने दिनों से हमने कुछ ढंग का खाया भी नहीं है। तब आस्था अपने चेहरे पर झूठ मूठ की मुस्कुराहट लाते हुए बोली थी, हाँ हाँ आहान भैया, हम अभी बना रहे हैं, आप क्यों फिक्र करते हैं। हालांकि आस्था के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। ये कहते हुए उसके चेहरे की चिंता और भी ज्यादा साफ दिखाई दे रही थी। फिलहाल आहान की फरमाइश पूरी करने के लिए आस्था जल्दी जल्दी किचन में काम कर रही थी। और चाकू से फटाफट आलू काट रही थी। ठीक उसी वक्त राधिका और वंशिका साथ साथ रौनक, मारिया और एंजल भी बहाने से आस्था के पास आ गई थी। वे सब वहां कुछ न कुछ काम करने का नाटक कर रही थी। हालांकि वे अपने बच्चों को खुद भी फीड करा लेती थीं, लेकिन अभी ठीक तरीके से बच्चों का पेट नहीं भर पाता था, इसलिए नानी माँ ने उन्हें समझाया था कि थोड़ा बहुत ऊपर का दूध भी दोनों पिला सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नानी माँ के बताए हुए मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हुए वे बच्चों के लिए दूध बना रही थीं। फिलहाल अब सारी लड़कियां कुछ न कुछ काम करने का नाटक कर रही थीं और साथ ही साथ आस्था को देखकर बोली थीं। तभी आस्था की ओर देखते हुए वंशिका ने कहा, आस्था, आज शाम को तो मैं तुम्हारे साथ डाकविला नहीं जा पाऊंगी, लेकिन मेरा यकीन मानो, मेरा आने का बहुत मन था। अगर मैं डाकविला में गई तो ध्रुव को शक हो सकता है।